ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है भारत की सफल अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और इसके अनुप्रयोगों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं इसरो में निदेशक डॉक्टर मनीष सक्सेना और विज्ञान प्रसार के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर टीवी वेंकटेश्वरन। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
चंद्रयान 3 मिशन ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर की सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग पूरी की। इसके बाद भारत चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के पास उतरने वाला पहला देश बन गया। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर की सफल तैनाती हुई। लैंडिंग स्थल को शिव शक्ति बिंदु नाम दिया गया और इस ऐतिहासिक उपलब्धि का सम्मान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया। भारत 23 अगस्त 2024 को अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाएगा। भारत की अंतरिक्ष यात्रा में इस रोमांचक मील के पत्थर के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने के लिए हमारे साथ हैं इसरो के सैट नैव प्रोग्राम ऑफिस में डायरेक्टर डॉक्टर मनीष सक्सेना और विज्ञान प्रसार में सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर टीवी वेंकटेश्वरन। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में।
नमस्कार, धन्यवाद।
डॉक्टर सक्सेना, अगर आपसे शुरुआत करें तो 23 अगस्त को भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण क्यों माना जाता है? हमारे देश के लिए चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के महत्व के बारे में आप हमें बता सकते हैं?
जी जरूर। सबसे पहले तो सभी श्रोताओं को भी नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि ये अंतरिक्ष क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर बहुत ही कम देशों के पास में ऐसी क्षमता है कि वे स्वयं से कुछ मिशन कर सकें। सबसे पहले तो प्रक्षेपण स्वयं एक बहुत ही कठिन कार्य है, जैसे लॉन्च हम कहते हैं। दूसरा, उपग्रह बनाना और उन्हें अल्टीमेटली ऑपरेट करना, वो भी काफी कठिन है। इन सब के अलावा जो राष्ट्र हैं वो केवल पृथ्वी के आसपास उपग्रह भेज पाते हैं। चंद्रमा तक पहुंचना और चंद्रमा के आसपास ऑर्बिट करना, उसमें एक अलग अपना चैलेंज है। लेकिन इन सबसे ऊपर, चंद्रमा के ऊपर एक सॉफ्ट लैंडिंग करना, वो उसका एक अलग ही आयाम है। तो आप सब जानते होंगे कि केवल 4 देश ऐसे हैं भारत को लेकर के, और इसके बाद में फिर जापान भी है, तो केवल बहुत ही कुछ गिने चुने ऐसे देश हैं जिन्होंने यह उपलब्धि प्राप्त की है। और उनमें से भी भारत पहला राष्ट्र है जो कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में पहुंचा है और वहां पर हमने सॉफ्ट लैंडिंग की है। तो यदि आप देखें तो हमारे राष्ट्र के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और हमारे जो वैज्ञानिक कम्युनिटी है उनके लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके अंदर न केवल हमारा जो डिजाइन और डेवलपमेंट उसका एक बहुत बड़ा रोल है, लेकिन इसके अंदर एक पूरा मिशन को किस तरीके से हम कार्य करवाते हैं और किस तरीके से हम रियल टाइम में सही समय पर सही डिसीजंस ले सकते हैं, उन सब का भी एक प्रमाण मिलता है। और जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि कुछ ही ऐसे क्षण होते हैं जो कि हमारे पूरे राष्ट्र को प्रेरित करते हैं। तो ये एक ऐसा क्षण है और इसीलिए ये काफी महत्वपूर्ण हमारे लिए एक उपलब्धि है।
डॉक्टर वेंकटेश्वरन, अगर आपके ओर आए तो आप बता सकते हैं कि जो चंद्रयान की सफलता है जिसके बारे में अभी विस्तार से डॉक्टर सक्सेना ने बताया, इससे स्पेस सेक्टर में हमारी अंतर्राष्ट्रीय साख पर क्या प्रभाव पड़ा और क्या भारत अब अंतरिक्ष क्षेत्र में एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी बन गया है?
एक इम्पॉर्टेंट चीज हम याद रखना है, पहला देश चांद में सफल किया, दर इज लैंड किया, वो सोवियत यूनियन था। उसके बाद अमेरिका में भी लैंड किया था, बट उसका और इसरो का लैंडिंग में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। सो अपोलो लैंड करने के समय उनको दिया 25 किलोमीटर रेंज में, एक बॉक्स के तरह एरिया में, किधर भी आप लैंड कर सकते हैं, वही था लक्ष्य। तो 25 किलोमीटर इमेजिन करना। चंद्रयान 3 लैंड करने के लिए था लगभग फ्यू 100 मीटर्स। इसका मतलब है प्रिसिशन लैंडिंग का सफलता प्रयास था ये चंद्रयान 3। सो हम ये सिर्फ नहीं बोल सकता है दैट पहले भी एटलीस्ट 3 देश चांद में लैंड हो गया। पहला वाला लैंडिंग है ना, अमेरिका का लैंडिंग और रशिया का लैंडिंग, वो इस तरह से प्रिसिशन लैंडिंग नहीं है। सो आजकल हमको प्रिसिशन लैंडिंग चाहिए, बिकॉज फ्यूचर में हमारा लक्ष्य है दैट इज मून में एक मून बेस क्रिएट करना। मून बेस क्रिएट किया तो देन मून बेस के साथ साथ एक लैंडिंग स्ट्रिप होगा ना, उधर ही लैंड होना है। उसके लिए आपको बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी चाहिए, उतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आप लैंड करने के लिए सिस्टम चाहिए। वो चंद्रयान 3 में हम डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया है। यह है इसका एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस, आई थिंक महत्वपूर्ण विषय हम आई थिंक हमारा नजर में रखना चाहिए। एंड सेकेंड, मनीष सक्सेना वेरी क्लियरली बोला है दैट इज पूरा देश इस विषय पर इंटरेस्ट रहा, एंथ्यूस हो गया था, यंग चिल्ड्रन एंड स्टूडेंट्स के बीच में एक बहुत ऊंचा हुआ था। सो ये देश का हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था।
जी बिल्कुल डॉक्टर सक्सेना, अगर भविष्य की बात करें तो भविष्य का रोड मैप क्या है? जैसे जैसे हम एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहे हैं, आप भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र को कहाँ देखते हैं?
जी हाँ, ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि अंतरिक्ष जो है वो एक बहुत ही अहम एक कंपोनेंट हो गया है। हर राष्ट्र के लिए एक संपत्ति है, ये एसेट है जो कि उन्हें संवार कर रखना है। तो हम अपने राष्ट्र की अगर बात करें तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में हम लोगों ने पिछले कई दशकों से कार्य किया है, लेकिन सन 2020 में जब सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार लाए, स्पेस सेक्टर के रिफॉर्म्स लाए, और उसके बाद से एक बहुत ही क्लियर एक रोडमैप जो रखा है राष्ट्र के सामने और अंतरिक्ष क्षेत्र के सामने कि हमें अपने विकसित भारत के जो लक्ष्य को प्राप्त करने में अंतरिक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान करेगा, तो उस योगदान में बेसिकली दो पहलू हैं। एक तो यह है कि हमें किस तरह से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, स्पेस इकोनॉमी में अपने आप को सुदृढ़ बनाना है, और दूसरा उसी के साथ में कैसे हम अंतरिक्ष अनुसंधान मतलब स्पेस रिसर्च के अंदर भी हम नए नए कार्य करें। तो इन दोनों कार्य को अगर हमें साथ में ले चलना है तो हमारे पास एक जो भूमिकाएं हैं अलग अलग एजेंसीज की और जिम्मेदारियां हैं वो सब बिल्कुल ही स्पष्ट होनी चाहिए। तो इनको रेखांकित करने के लिए सरकार ने स्पेस पॉलिसी, अंतरिक्ष नीति एक रिलीज की है 2023 में। इसके अंदर सारी भूमिकाएं बिल्कुल स्पष्ट रूप से आई हैं। तो इसमें ऐसा है कि सबसे पहले तो यदि हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो हमें अर्थव्यवस्था के अंदर देखना होगा कि केवल जो सरकारी एजेंसी है वो अपनी अर्थव्यवस्था को आगे नहीं ले जा सकती है, एक लिमिट के बाद में उसे हमें ओपन करना पड़ेगा। तो उद्योगों को, स्टार्टअप्स को और जो शैक्षिक जो संस्थान है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, इन्हें अपना एक खुद का एक भूमिका जो है वो बढ़ानी होगी। तो बहुत सारे ऐसे अनेक पहलू हैं इस पॉलिसी के अंदर में जो कि इन सब जो प्लेयर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके रोल को स्पष्ट करती है, उन्हें क्लैरिटी देती है और उन्हें प्रमोट करती है। दूसरा है, जहां तक कि इसरो और स्पेस एजेंसी की बात है, तो हमें लक्ष्य दिए गए हैं अनुसंधान और अन्वेषण, मतलब कि रिसर्च एज वेल एज एक्सप्लोरेशन, इन चीजों पे हमें अन्वेषण पे कार्य करना होगा। तो आगे जाकर के जो आप देखेंगे तो इसरो के जो मिशन्स होंगे वो इस पहलू को लेकर के आगे बढ़ेंगे, जिसके अंदर की आप जानते हैं कि गगनयान मिशन है, फिर आगे के जो मिशन्स हैं वो, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य दिया है कि हमें भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाना है और एक भारतीय को चंद्रमा की सतह पर लैंड करना है। ये सब हमें इस विकसित भारत के जो अमृतकाल है उसी के अंदर करना है। तो उसके लिए जो अनेक तकनीकी जो कंपोनेंट्स हैं उन सबको हमें क्रमशः फेज वाइज उनका डेवलपमेंट करना है और उन्हें अल्टीमेटली कार्यान्वित करना है, इम्प्लीमेंट करना है, ताकि हम अपने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो ये कुछ ऐसे ओवरऑल इस तरीके के टारगेट्स हैं जिन पर कि हम लोग काम करेंगे आने वाले वर्षों में।
डॉक्टर वेंकटेश्वरन, जो प्राइवेटाइजेशन की बात करी डॉक्टर सक्सेना ने, आप हमें बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि निजी भागीदारी को आगे बढ़ाने का कितना पोटेंशियल है और क्या चैलेंजेस हैं?
एक चीज हम अभी स्पेस मार्केट में देख सकता है, लोग माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट, स्मॉल सैटेलाइट, नैनो सैटेलाइट, उसके ऊपर बहुत ध्यान पड़ गया है। छोटा छोटा सैटेलाइट बहुत मात्रा में, 100 सैटेलाइट, 50 सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए आजकल कम्युनिकेशन इंडस्ट्री ने वर्कआउट कर रहा है। सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं है, इवन रिमोट सेंसिंग इस तरह से छोटा सैटेलाइट से करने के लिए प्रयास कर रहा है। रीजन बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रॉनिक्स इतना वेग में ट्रांसफर हो रहा है, बदलाव आ रहा है, दैट आप स्पेस में 30 ईयर्स के लिए एक सैटेलाइट रखा तो देन उसका इलेक्ट्रॉनिक बहुत पुराना हो जाए। तो इसलिए आपको टर्नओवर ज्यादा होना चाहिए, दैट इज लगभग 2 साल 5 साल सिर्फ आप रखना है, वो रखना है तो बड़ा बड़ा सैटेलाइट बहुत दूर भेजने में यूज नहीं है। तो इसलिए लो अर्थ ऑर्बिट में भेजने के लिए लोग प्रयास कर रहा है, लगभग 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर के ऊपर करने के लिए प्रयास कर रहा है। इस मार्केट में अभी इसरो का स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने का चांस है, इसलिए सेकेंड स्पेस पोर्ट आप सुन सकता था कुलसेकरपट्टनम तमिलनाडु में ओपन कर दिया, बिकॉज स्पेसिफिकली टू लॉन्च ए स्मॉल सैटेलाइट व्हीकल। एंड ये स्मॉल सैटेलाइट व्हीकल पहला प्राइवेटाइजेशन में इसका बहुत रोल होगा, बेसिकली बिकॉज मोस्ट ऑफ द लॉन्चेस ये स्मॉल सैटेलाइट व्हीकल में लॉन्च होने वाला बहुत सैटेलाइट प्राइवेट कंपनीज का होगा, इसलिए इसमें प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करने में बहुत एफर्ट हो रहा है। इसके अलावा एक और चीज मैं जस्ट हाईलाइट करना चाह रहा हूं, दैट इज आपका पहला क्वेश्चन के बारे में, लॉन्च व्हीकल देखा तो उसमें प्रोग्रेस हो रहा है। यूनिवर्सल लॉन्च व्हीकल 2 स्टेज 2 ऑर्बिट इस तरह से लॉन्च व्हीकल तैयार करने के लिए इसरो प्लान कर रहा है, सेम टाइम इंजन स्पेस में इंजन में गोइंग बियॉन्ड क्रायोजेनिक आयोन इंजन इस तरह से भी प्रयास हो रहा है। इसी तरह डीप स्पेस में इन एडिशन टू मून एंड मार्स सन के पास हम चला गया, पास के पास नहीं है, सन को स्टडी करने के लिए आदित्य मिशन भेज गया है। वीनस के ऊपर भी शुक्रयान मिशन का प्लान चल रहा है। एंड देन इफ यू लुक एट स्पेस जंप, एक बहुत बड़ा इश्यू है स्पेस में सफाई, उसके भी इसरो ने आगे कदम रखा। दैट इज इसरो इज डूइंग थिंग्स सो दैट स्पेस जंप नहीं बढ़ा, इसलिए क्या करना है उसके लिए भी काम हो रहा है। सो डिफरेंट डायरेक्शन में इसरो अभी आजकल उसका फ्यूचर प्लान चल रहा है। ये एक हम समझना है, सिर्फ एक इश्यू नहीं है, मल्टीपल थिंग सेम टाइम इसरो करना है, सो उसके लिए भी प्लानिंग चल।
तो डॉक्टर सक्सेना, क्या आप हमें बता सकते हैं कि अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रगति, जो इतनी सारी पहलुओं पर कार्य चल रहा है जैसे डॉक्टर वेंकटेश्वरन ने बताया, तो अंतरिक्ष क्षेत्र में जो प्रगति है उससे अर्थव्यवस्था को कैसे मदद मिलती है, अर्थव्यवस्था के किन किन क्षेत्रों को स्पेस साइंस की एप्लीकेशन से लाभ होगा, पूरे देश को क्या लाभ होता है?
जी हाँ, अर्थव्यवस्था में जितने भी सिविलियन सेक्टर्स हैं, जितने भी क्षेत्र हैं जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में हम उपयोग करते हैं, उन सभी क्षेत्रों में अंतरिक्ष ने कहीं ना कहीं हमें छुआ है। अभी पहली बात तो ये जानना जरूरी है कि कोई भी तकनीक अपने आप में पूरा शत प्रतिशत आपको उपाय नहीं देती है, 100% सॉल्यूशन नहीं देती है, अलग अलग तकनीकों के मिश्रण से हमें एक फाइनल उपाय मिलता है। अंतरिक्ष जो है वो हमारे जितने भी सेक्टर्स है, जैसे मैंने कहा, जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में है, उनको सबको छूता है। अब हम मान लेते हैं कि जैसे कृषि क्षेत्र देखें, तो उसके अंदर किसान कौन से पौधे लगाए, उसके जो पौधे हैं वो कितने अच्छे से उग रहे हैं, उसके विषय में जानकारी, यदि कोई पेस्टिसाइड की जरूरत हो उसके विषय में जानकारी, ये सारी जो भी जानकारी है वो रिमोट सेंसिंग मतलब कि सुदूर संवेदन के जरिए से हमारे पास मिलती है, और उससे हम फिर उचित तरह से हम अपने किसानों के पास पहुंचाते हैं। दूसरा, अगर हम देखें प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेज की जो मॉनिटरिंग होती है, उसके लिए भी अंतरिक्ष एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहां से कि आप एक बहुत बड़े क्षेत्र को एक ही समय में और बार बार देख सकते हैं। फिर अगर हम देखें कि मछुआरों के लिए जो फिशरीज की इन्फॉर्मेशन है, जानकारी जो है कि कहाँ पे उन्हें अच्छी मछलियां मिलेंगी, उनका पकड़ मिलेगा, उसके विषय में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो भी हम अपने उपग्रहों के जरिए से पहुंचा सकते हैं। तो ये अनेक क्षेत्र हैं जो कि न केवल हमारे जीवन को असर करती है, लेकिन हमें अपने इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए भी एक मददगार साबित होती है। अभी ये तो सुदूर संवेदन की बात हुई, दूर संचार के अंदर में हमने देखा कि टेली मेडिसिन, टेली एजुकेशन, इस तरह के जो कार्यक्रम थे जो पहले चलाए गए थे और आज भी कई ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं, जो कि सामाजिक क्षेत्र में अलग अलग लोगों को, अलग अलग प्रांतों में जो रहते हैं सबको, बराबरी से सबको मदद कर सकते हैं। इस तरीके की क्षमता सुदूर संवेदन में है और सुदूर संचार में है। मौसम के बारे में जो जानकारियां हमें मिलती है, उससे हमें जो हमारे मेट्रोलॉजिकल सेटेलाइट्स है उससे हमें जानकारी मिलती है, और न केवल हमें अपने वर्षा और गर्मी इनके बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन जो साइक्लोन्स हैं, चक्रवात हैं जो आने वाले हैं, उसके विषय में जैसे हमें पहले से वार्निंग मिलती है तो हम सतर्क हो जाते हैं, हमारी एजेंसियां सतर्क हो जाती हैं और जान माल का नुकसान बचाती है लोगों के लिए। तो ये सब हमारे जीवन को छूती है। नवगति जो मार्गदर्शन है, नेविगेशन, वो भी सेटेलाइट के थ्रू, उपग्रह के थ्रू कर सकते हैं, जिस पर कि मेरा ऑफिस जो काम करता है। तो ये भी एक ऐसा घटक है, एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि सारे क्षेत्रों में हमारे को मदद करता है। और अर्थव्यवस्था की दूसरी जो पहलू है वो एक तो ये है कि जो हमारे सिटीजन्स के लिए, नागरिकों के लिए मदद मिलता है, दूसरा है कि हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं, जो उद्योग हैं, उसके अंदर में बहुत सारे ऐसे अवसर होता है जो कि अंतरिक्ष की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है, न केवल अपस्ट्रीम में जैसे कि अभी कहा प्रक्षेपण के विषय में, उपग्रह बनाने के विषय में, बट इवन डाउनस्ट्रीम में, जहां की बहुत सारे एप्लीकेशंस जो होते हैं, उन एप्लीकेशंस को भी लोगों ने बनाया है, और उससे हमारे जो युवाओं हैं उन्होंने बहुत सारी ऐसी नए नए एप्लीकेशंस को बना करके और अपनी जो अनुप्रयोगों के जरिए अपने बिजनेसेस को बढ़ाया है। तो उस तरीके से भी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है।
डॉक्टर वेंकटेश्वरन, अगर हम बात करें स्पेस सेक्टर और स्पेस सेक्टर प्रोडक्ट्स की, तो कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड भी है, और जो भी डेवलपमेंट होती है वो पूरे विश्व को प्रभावित करती है, उसका उद्धार होता है। अगर हमारा चंद्रयान 3 लैंड करता है तो बाकी देशों के लिए भी उसमें फायदा है। तो इन सबको देखते हुए जो FDI की लिमिट्स बढ़ाई गई है उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं कि ये जो सरकार का कदम है, ये जो रिफॉर्म हुआ है कि FDI ज्यादा आकर्षित किया जाए, वो कितना सिग्निफिकेंट है स्टार्टअप सेक्टर के लिए?
हम सोच लो आप कुछ रिमोट जगह में, आई मीन नॉट सिटी में नहीं है बट सिटी के बाहर, कुछ छोटा शहर छोटा शहर या गांव का इलाका में है, उधर भी एटीएम चल रहा है ना, तो आप एटीएम में आप कार्ड चला के एटीएम को ऑपरेट करने के समय याद रखना है वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट के थ्रू हो रहा है। आजकल बहुत ज्यादा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इवन छोटा छोटा प्लेसेस में डिजिटल रूप में हो रहा है ना, इसका बैकबोन ये सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के द्वारा साबित किया है एंड इसरो का रोल इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। सेम वे सेकेंड एक और चीज हम अर्थव्यवस्था के बारे में बात करने के समय याद रखना है, सेविंग लाइफ। मैं बचपन में स्कूल पढ़ने के समय मैं तमिलनाडु के प्रदेश में है, एवरी दिसंबर एवरी नवंबर एक ह्यूज साइक्लोन उस जगह में आ जाएगा एंड देन बहुत लोग का डेथ इस तूफान के कारण होता था। आजकल नहीं है, आजकल तूफान आ रहा है, तूफान का इंटेंसिटी भी बढ़ गया है, ऑफकोर्स देर आर लॉसेस इन टर्म्स ऑफ हाउसेस बोट्स वगैरह, बट ह्यूमन लॉसेस उतना नहीं है। क्यों? बिकॉज हम सैटेलाइट पावर के यूज करके हम हमारा प्रेडिक्शन को यूज करके बहुत टाइम के पहले ही हम प्रेडिक्ट कर सकता है किधर क्रॉस होगा, सो उधर से लोग को हटा के ह्यूमन लाइफ को सेव कर सकता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज है, आजकल युवा को ये पता नहीं, दैट इज 50 इयर्स एगो कैसा था सिचुएशन, उसे हम इतना मात्रा में कैसा ये चेंज हुआ, उसमें स्पेस टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, वो आई थिंक मेनी यूथ डू नॉट अंडरस्टैंड बिकॉज उनका सामने ये नहीं हो रहा है, तो दे डोंट इवन रियलाइज दैट इसका इम्पोर्टेंस। आई थिंक ये इम्पोर्टेंट इश्यू है। नेक्स्ट मैं एक चीज बोला था, दैट इज हाउ स्पेस सेक्टर में एक नया दिशा खोल रहा है, दैट इज इंटरनेशनली स्मॉल सैटेलाइट वगैरह बहुत चल रहा है, दैट इज नाउ पीपल आर मूविंग अवे फ्रॉम टावर बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम टू ट्रेन ऑफ स्मॉल सैटेलाइट। एक के पीछे एक स्मॉल स्मॉल सैटेलाइट को डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में एक को रोटेट करते रखे, इवन रिमोटेस्ट प्लेस को आप सिग्नल्स दे सकता है, हाई स्पीड सिग्नल दे सकता है, तो इस तरह से ये कम्युनिकेशन का बैकबोन में एक बहुत बड़ा चेंज का दिशा में चल रहा है। इसी तरह फॉर एग्जांपल रिमोट सेंसिंग, इवन प्लानिंग, सपोज दैट एक बहुत बड़ा फैक्ट्री में बिल्ड करना है, सो उस जगह क्या है, उस जगह के पास क्या है, उस जगह में क्या क्या होगा, ये सब समझने के लिए एक जियो स्पेशल स्टडी आवश्यक है, सो वो स्पेस से हम तैयार कर सकता है। सो देयर इज ह्यूज इकोनॉमिक पोटेंशियल आउट ऑफ द स्पेस टेक्नोलॉजी एंड इंडिया ने एक प्लानिंग कर रहा है दैट इंडिया में स्पेस इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना है, सो वो देना है तो उसको कैपिटल चाहिए, सो वो कैपिटल अट्रैक्ट करने के लिए एफडीआई को हम एक पॉसिबल रूट सोच के हम काम करना है करके सोच के ये एफडीआई में रिलैक्सेशन लेके आया है एंड ऑलरेडी समथिंग लाइक अबाउट 240 स्टार्टअप्स स्पेस टेक्नोलॉजी में स्टार्ट हो गया है, दो तीन स्टार्टअप्स इवन डेमोन्स्ट्रेशन रॉकेट्स तैयार करके लॉन्च व्हीकल तैयार करके वो ड्राइव कर रहा है एंड कुलशेखरपट्टनम में इसरो एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तमिलनाडु इकट्ठा एक स्पेस पार्क बनाने में भी वर्क हुए।
जी डॉक्टर सक्सेना, हम जल्दी ही 23 अगस्त के दिन अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाएंगे। हर साल 23 अगस्त के दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने के निर्णय के पीछे प्रमुख उद्देश्य क्या है आपके अनुसार?
इसका उद्देश्य दो है। पहला है कि हमें अपनी उपलब्धि का जो खुशी एक जश्न मनाना चाहिए, क्योंकि 23 अगस्त को जैसे कि आप सब जानते हैं कि चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग की थी चंद्रमा की सतह पर, तो वो एक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है, एक ऐसा क्षण है जिसकी हमें खुशी मनाना चाहिए। तो पहला उद्देश्य तो ये है कि हमें इस दिन को एक खुशी के अवसर की तरह लेना होगा, और दूसरा ये है कि हमें केवल खुश रहने से ही काम नहीं चलेगा, हमें आगे काफी कुछ करना है, यह एक शुरुआत है। तो किस तरह से हम अपनी युवा पीढ़ी को प्रेरित कर सके इस अवसर को यूज करते हुए, इस अवसर का फायदा उठाते हुए कि कैसे हम स्टूडेंट्स को और यंगस्टर्स को कैसे हम प्रेरित कर सके कि वे आगे का कार्य करें, तो ये दिन हमें याद दिलाएगा कि हमने कुछ उपलब्ध तो किया है लेकिन हमें बहुत कुछ और करना है। तो इस तरह से हर वर्ष जब हम 23 अगस्त को ये नेशनल स्पेस या राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाएंगे तो हमें इन दोनों चीजों को याद रखना होगा और उसी चीजों को ध्यान में रखते हुए कार्य करना होगा।
डॉक्टर वेंकटेश्वरन, आपसे जानना चाहेंगे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के लिए योजनाबद्ध प्रमुख कार्यक्रम गतिविधियां क्या हैं, क्या ऐसी पहल युवाओं को विज्ञान को गंभीर रूप से अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं?
एवरी यूथ एवरी स्मॉल चिल्ड्रन गेट्स अवॉर्ड बाय यूनिवर्स स्पेस स्पेस ट्रैवल एंड सो ऑन। सो आजकल एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा हमारा पास है, दैट इज हाउ यंग पीपल को स्टेम साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिक्स के पढ़ाई करने के लिए अट्रैक्ट कर सकता है, इस कैरियर लेने के लिए कैसा अट्रैक्ट कर सकता है, एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारा सामने है। एंड ये स्पेस डे के थ्रू इस तरह से एक्शन पूरा देश में, आई मीन डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, पब्लिक प्लेसेस में, इवन गवर्नमेंट इन इट्स ओन वे इसको ऑर्गेनाइज करने के समय वी विल बी एबल टू अट्रैक्ट यंग पीपल। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। सेकेंड, स्पेस डे के इस प्रोग्राम से सिर्फ स्पेस टेक्नोलॉजी को नहीं, आई थिंक पूरा साइंस को एक फोकस मिले, बिकॉज स्पेस टेक्नोलॉजी आप बात करने के समय उसमें डिफरेंट डिफरेंट साइंसेज उसके साथ इंक्लूडेड है ना, तो वो सब हम बात करने के समय पूरा साइंस को एक हाईलाइट मिलेगा इस समय में। एंड देन ऑल्सो बहुत लोगों को ये क्वेश्चन है दैट क्यों हम इस तरह से स्पेस टेक्नोलॉजी वगैरह में हम मनी स्पेंड कर रहा है, हमारा पास बहुत और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स है, उसमें हम क्यों फोकस नहीं कर रहा है। इस तरह से एक आम जनता के बीच में, कुछ कुछ लोग के बीच में एक सवाल उठता है, वो सवाल को हम एड्रेस कर सकता है इस डे में। हम ये प्रोग्राम करने के समय किस तरीके से ये स्पेस टेक्नोलॉजी डिफरेंट रूप में हमारा डेली लाइफ में इम्पैक्ट हो रहा है करके बात करके हम एड्रेस कर सकता है, दिस आई थिंक इज वेरी इम्पोर्टेंट। इस तरह से एक डे बनने में बहुत डिफरेंट इश्यूज को हम टच करके लोग के बीच हम जा सकते हैं।
जी डॉक्टर सक्सेना, आपसे जानना चाहेंगे इस वर्ष के अंतरिक्ष दिवस की थीम चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना भारत की अंतरिक्ष गाथा है, जो समाज और प्रौद्योगिकी पर अंतरिक्ष अन्वेषण के गहरे प्रभाव पर बल देती है। क्या आप हमें इसके बारे में अधिक विस्तार से बता सकते हैं, इस थीम के बारे में इसका महत्व क्या है?
जी हाँ, ये एक आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि इस थीम को बनाने के पीछे काफी सोचा गया था। तो ये जैसे आपने कहा कि अनेक चीजों को एक साथ में एड्रेस करता है कि टचिंग लाइव वाइल्ड टचिंग द मून, इंडिया स्पेस सागा। तो इसके अंदर में एक तो हमारी गाथा है कि किस तरह से अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत ने शुरुआत से ही अपने कदम रखे और आज एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां पर कि ये भारत अपना विश्व के प्रमुख देशों में से है अंतरिक्ष के तकनीक के विषय में। तो ये हमारी एक सागा है, जो गाथा है, जो कि हम सेलिब्रेट करेंगे। दूसरा है कि टचिंग द मून, तो जैसे हम जानते हैं कि 23 अगस्त को हमने टच किया था मून को, चंद्रमा को हमने छुआ था, तो ये भी हम एक याद रखने वाला दिन है, इस विषय के बारे में का महत्व है। लेकिन इन सब के ऊपर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टचिंग लाइव्स। तो हम मून को तो टच कर रहे हैं, चंद्रमा को हम छू रहे हैं, लेकिन हम जो मनुष्य के जो जीवन है उसको भी छू रहे हैं। अनेक तरीकों से हम मनुष्य के जीवन को इम्पैक्ट कर रहे हैं, जैसे कि हमने पहले देखा कि रिमोट सेंसिंग या सुदूर संवेदन, मौसम की जानकारी मीटरोलॉजी, दूर संचार, मार्गदर्शन और अंतरिक्ष विज्ञान, इन तकनीकों से हम किस तरीके से नागरिकों के रोज के जीवन को प्रभावित करते हैं और गवर्नेंस में और इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में, इन सब जगहों पर भी हम अपना इम्प्रेशन डालते हैं। तो इस तरीके से हम जीवन को छूने वाले हैं और छू रहे हैं। तो ये हमारे थीम के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण फ्रेज है कि टचिंग लाइव्स। सो वी आर टचिंग द लाइव्स व्हाइल वी आर डूइंग द अदर थिंग्स। तो मेरे ख्याल से ये जो थीम है ये काफी सटीक है और काफी एक्यूरेट है हमारे अंतरिक्ष के सेक्टर के लिए।
डॉक्टर वेंकटेश्वरन, आपसे भी यही सवाल करूंगी, क्योंकि ये पहला मेडन्स नेशनल स्पेस डे है, जो थीम रखी गई है टचिंग लाइव्स व्हाइल टचिंग द मून, इंडिया स्पेस सागा। आपके विचार में क्या मायने हैं, ये क्या कन्वे कर रहा है जो भी इस नेशनल स्पेस डे से जुड़ने वाले हैं या प्रभावित होने वाले हैं युवा, उनके लिए क्या मैसेज होगा?
आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, वो टचिंग लाइफ से मैं भी स्टार्ट करेंगे। ये चंद्रयान 3 सबको टच किए, आई थिंक लगभग सभी देशवासियों उस दिन टेलीविजन या रेडियो के पास खड़ा होके या सोशल मीडिया के पास खड़ा होके वो क्या हो रहा है देखते रह रहा था। एंड नॉट ओनली जस्ट ऑन दैट डे, आई थिंक नेक्स्ट 14 डेज लोग इसका अपडेट्स क्या है करके सोच रहा था। सो टचिंग लाइफ इस तरह से भी हम देख सकता है दैट हम साइंस को सिर्फ स्कूल में इंट्रोड्यूस हो रहा है, स्कूल के बाहर हमको साइंस लर्न करने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है। बट ऑन द अदर हैंड, बिकॉज ऑफ दिस चंद्रयान, लगभग 2 वीक हम सब लोग साइंस का डिफरेंट एस्पेक्ट के इंट्रोड्यूस होने के लिए एक चांस हमको मिला। सो इसका मतलब है दैट पूरा देशवासियों को एक तरीके से हम छू सकता था दिस चंद्रयान मिशन के थ्रू, पर्टिकुलरली यंग पीपल को टच कर सकता था। सेकेंड इज होप। आजकल हमारा सामने बहुत डिफरेंट डिफरेंट मुद्दा है, क्लाइमेट चेंज मुद्दा है, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग से मुद्दा है, बट ये मुद्दा को हम फेस करना है तो हमको एक होप चाहिए, दैट हम कर सकता है करके एक होप चाहिए। मेरे ख्याल से ये चंद्रयान 3 उस तरह से एक होप हमारा बीच में पैदा किया है। पर्टिकुलरली यूथ के बीच में, दैट हम कर सकता है, हम भी चैलेंजेस को फेस कर सकता है करके एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है. आई थिंक दैट्स ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. थर्ड, एक छोटा एग्जाम्पल से इसका अनदर डायमेंशन में भी मैं प्रेजेंट करना सोच रहा हूं. सी, आज इंडिया और बाकी फ्यू देश, लगभग 20 देशों ने इकट्ठा करके फ्रांस में एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट शुरू किया है. कुछ साल के पहले वो एक्सपेरिमेंट शुरू किया है, उसका कंस्ट्रक्शन वगैरह अभी चल रहा है. लगभग 2035-36 के बीच में वो साबित होगा. ये क्या है? आर्टिफिशियल सन. उसका मतलब क्या है? सन में कैसा एनर्जी पैदा हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन. वो न्यूक्लियर फ्यूजन को आर्टिफिशियली हम हेल्थ में कर सकता है क्या, करके उसे हम इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है क्या, करके एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है. इंडिया भी उसमें भाग है. सो उस तरह से फ्यूजन रिएक्टर में वी कैन यूज फॉर एग्जाम्पल हीलियम-3. चांद में बहुत मात्रा में हमको मिलेगा, उधर हम माइन करके धरती में लेके आने का चांसेस है. सो ये हीलियम-3 को हम हार्वेस्ट किया तो चांद से, दैट इस तरह से आर्टिफिशियल सन एनर्जी प्रोडक्शन को हम कर सकता है. इस आर्टिफिशियल सन एनर्जी प्रोडक्शन फ्यूजन रिएक्टर में कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं है, सो सेफ्टी इश्यूज नहीं है, एंड देर इज नो क्लाइमेट चेंज रिलीज, देर इज कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वो पोल्यूशन नहीं करेगा. सो इसलिए एक ग्रीन एनर्जी होगा. फॉर एग्जाम्पल इवन दैट एक्चुअली विल टच अवर लाइफ, राइट? बिकॉज वी डू नीड एनर्जी. इंडिया इज इन डेवलपमेंट पाथ. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमको एनर्जी चाहिए. एनर्जी में ऑफकोर्स एनर्जी सेविंग भी करना है, बट एट द सेम टाइम सर्टली वी विल नीड मोर एनर्जी सोर्सेस. सो इन अ वे ऑल दिस इन डिफरेंट फैशन से दिस चंद्रयान मिशन एंड ऑल्सो आवर एफर्ट एट स्पेस, इसरो का एफर्ट है ना, ये हमारा लाइफ में डिफरेंट तरीके से टच कर रहा है.
जी डॉक्टर सक्सेना, आपसे बस एक क्लोजिंग चाहेंगे स्टेटमेंट की. जो इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 का लक्ष्य है कि ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में भारत का जो शेयर है वो 2% से बढ़ाकर 9% कर दिया जाए 2030 तक, आपको लगता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे ओवरऑल जो विकास का सपना है उसको पूरा करने के लिए?
जी हाँ, बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है. और जहां पर एक तरफ तो ये चैलेंजिंग है, वहीं दूसरी तरफ ये संभव भी है. यदि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वे सब मिलकर के कार्य करें तो ये वाला लक्ष्य हम प्राप्त कर सकते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम ये लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे.
सो डॉक्टर वेंकटेश्वरन, डॉक्टर सक्सेना, भारत की सफल अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
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 अभी आप सुन रहे थे भारत की सफल अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और इसके अनुप्रयोगों पर परिचर्चा. इसमें भाग ले रहे थे इसरो में निदेशक डॉक्टर मनीष सक्सेना और विज्ञान प्रसार के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर टीवी वेंकटेश्वरन. कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया. इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं. इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं. ईमेल का पता है airnstalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044.